ऐसा प्रमाण नहीं है जो पाया कि वन क्षमती यहां में कहा कि ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रहस्य। इसलिए मनुष्य जीव के लिए यदि यरस मिल गया, यदि कथा रस से इस कथा में रस उनको मिला तो ब्राह्मण इत्यादि जन्म की कोई भी आशा। ब्राह्मण माने यहाँ तक त्रि जन्म के लिए का त्रि जन्म मैंने शौक्र सावत्र और दक्ष। इन जन्मों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ जो है वहीं से ये लाभ पा सकता है। यदि हरि कथाओं में रस हुआ, उन रसिक और भाव भक्तों का यदि संग मिल गया तो, और यदि नहीं मिला तो नहीं, अथवा यदि मिल नहीं मिला तो फिर ब्राह्मण जन्म इत्यादि की या ब्रह्मा होने की भी क्या आवश्यकता है, बेकार का वो है। आराध्य तो यदि हरि तपसा तथा क्यों, यदि भगवान की आराधना यदि हो गई तो आराध्य तो तपस्या की आवश्यकता। नाराज तो यदि हरि, यदि हरि की आराधना नहीं तो तपस्या क्या कर लेगा। ऐसे यदि ब्राह्मण इत्यादि हो गए, ब्रह्मा भी हो गए और प्रेम का रस स्वादन नहीं मिला तो उनका जन्म बेकार। और यदि यदि वो मिल गया तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है। वही कह रहे हैं यदि इस ऐसे रस कथा में कथा रूपी रस में यदि थोड़ी सी लालसा लोभ उत्पन्न हो गया तो जीवन सार्थक, और अन्यथा ब्राह्मण जन्म लेकर के भी कोई भी आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी बन करके कोई भी लाभ, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो कहते हैं ना कदभूरी भाग जमीन जन्म तुम अटक जन्म इत्यादि उन्होंने कहा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म जन्म भी पूजा, इसलिए यहाँ पर कहें ब्रह्मा उद्धव और दूसरे लोगों को भी गोपियों के इन रूढ़ाओं को देख करके लोग उत्पन्न हो जाता है। पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो पीछे की बात है, अंत तो लोग हो जाता है। इसलिए भाव होने पर इन कथाओं के प्रति उनको भी रस आने लगता है, इसलिए वो लोग और सब लोगों से श्रेष्ठ हो जाते हैं उन भावों की कामना। आज
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जब परिपक्वावस्था उपस्थित हो जाती है तब उसकी उस स्थिति को देखकर के भावों को देखकर ब्रह्मा इत्यादि को उद्धव को भी और सब लोगों को शोक होता है, जो मैंने पाने की लालसा उसी को दिखलाया है। वन छंति जब भाव योग वन छंति वन क्या करते हैं, किंतु अभी तक तो मिला नहीं और निकलात्मन ये रूढ़ भाव रूढ़ भाव कल मैंने रूढ़ाव की व्याख्या हमने कुछ वो केवल गोपी में ही रूढ़ाव है, इसके लिए कल हमने व्याख्या गोपियों में वो रूढ़ाव है उसी जगह में, इसलिए उनको देख करके ब्रह्मा इत्यादि में भी और लोग उद्भव में भी उसको प्राप्ति होने की लालसा। पृष्ठ रति पशुलभम, पृष्ठ मैंने ये महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है, उसकी यदि कृपा पड़ गई तो उनकी कृपा से ऐसी भावमयी भक्ति होती है जो पृष्ठ ही मैंने नारद जैसे पृष्ठ लोग हैं
जो सूख नारद
ब्रह्मास्त नहीं नारद नारद है पृष्ठ। ब्रह्मा जी कभी वृद्धि नहीं जाते, उनको उनके प्रति कुछ भी ऐसा भाव नारद जी को वो ये पूछ रहा था जब ब्रह्मा जी को नहीं हुआ तो हम लोग को कैसे हो। ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना नारद,
नारद जी कैसे हो गए,
और नारद जी दासी के पुत्र, ब्रह्मा जी का काट दो ब्रह्मा जी के पुत्र न होकर के दासी पुत्र, तो इस दासी पुत्र को जो हो गया वो ब्रह्मा जी को नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो सकता। भगवान की कृपा ही ऐसी है। तो कल हमने इसके विषय में बताया कि भगवान की कथा ही ऐसी है, वो भाव ही ऐसे हैं, जिसको वो भाव हो जाता है फिर उनको ये लालसा ऐसी होती है जो और सब लोगों के लिए संभव है। ऐसे भाव भक्त ही ये सब में लोगों का लोग होने से उनके अंदर में वैसे ही भाव है, इसलिए कहते हैं भवती मुनिगण आर देवगण जहाँ में चरण बंछा करें अनुखम से गोविंद रूढ़ भावापन्न गोपीधन से गोविंदे रूढ़ भावापन्न गोपीगुणधन कृष्ण रस आगे ब्रह्मजन जन्म नहीं बन। ब्रह्मा के जन्म होने की भी कोई गिनती नहीं रखती ऐसा वो भाव। ये छठा छठा जान का भजन है। अंत में कहते हैं जो ऐश्वर्य प्रिय जो भक्त हैं उनको भी गोपी भाव की लालसा उत्पन्न हो जाती है। लालसा उत्पन्न होती है कि नहीं उसके पीछे की बात, किंतु ऐसा जो भाव है रूढ़ भाव ऐश्वर्य प्रिय भक्त जो हैं उनको भी ऐश्वर्य प्रिय क्यों कौन है, मथुरा की कुमारी राजाओं की पत्नी रमणी मथुर रमणी कब जब कृष्ण वहां पर गए रंगस्थली में और चारण मस्तिष्क से उनको युद्ध होने की तैयारी हो रही उस समय उन्होंने कहा कि इस सभा को अधर्म लग गया, यहाँ पर धर्म को कराना उचित नहीं है, नहीं तो पाप स्पर्श करना। और जिस समय में गोपियों के सौभाग्य का वो वर्णन कर रहे हैं गोप्य तप किमाचरण लावण्य सार असमोध्वानंद सिद्धम त्रिग्धि पिबन तनुषवाभिनवम दुराप एकांक भाम जसस ऐश्वर्य। मथुरा में ऐश्वर्य भाव नहीं हो, ऐश्वर्य भाव मैंने उनको भगवान जाने, कृष्ण को साधारण नहीं जाने भगवान भी जाने। तब द्वारका से ऐश्वर्य यहाँ अनुभूत अधिक होने पर अनुभूति कुछ कम है, ऐश्वर्य वहाँ पर अधिक अनुभूत होता है और वहाँ से ऐश्वर्य कम अनुभूति होती है मथुरा में और मथुरा से कम किंतु है ऐश्वर्य अधिक। इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य प्रिय जो भक्त हैं मथुरा के रहने वाली की वो कारण है कृष्ण को रंगस्थली में देखी और चारू मूर्ति से लड़ते हुए देखा तो वो कारण गोप्य तपक की मचारण जमक मुश्कर जब अमुष्म, अमुष्म मैंने कि वो जो कृष्ण है जो लड़ रहा है उनके हाथ से दिखलाता, अमुष्म मैंने वह, और यह उंगली सब यह या खत्म कर जब युद्ध हो रहा है तो थोड़ा सा दूर नहीं इसके अमुष्म रूप उस समुष्य रूप को उस रूप को कृष्ण कैसा रूप लावण्य सार असमोनंद सिद्धम लावण्य का सार लावण्य सब सौंदर्य का सार और उसका सार और लावण्य का सार और असमोर्थ असमोर्थ जिनके समान भी कोई रूप नहीं है और जिनसे बड़ा भी नहीं है ये सब दूसरा शब्द है असमोर्थ और कोई दूसरा शब्द साम्य
न साम्यति असाम्यति सर
साम्य
न साम्य
साम्य भी नहीं है अतिशय भी
अतिशय भी
ऐसा जरूर है और कैसा है अनन्य सिद्धम दूसरे दूसरे के द्वारा वो रूप
सिद्ध नहीं हुआ है
वो सिद्ध नहीं स्वयं सिद्ध है किसी आभूषण के द्वारा किसी और के द्वारा ऐसा अनन्य सिद्धम उस रूप को दृग्धि पिबंत अनुसवा नवम दुरा आंखों से उसको पी रही है कौन पी रही है गोपियां इसलिए उन्होंने न जाने कौन सा तप किया था कि उस रूप को रस के रूप में पी रही है कैसे पी रही है आंखों से पी रही है मुख से नहीं इवन अनुस्वादनम जैसे मदिरा पान किया जाता है 800 मदिरा ऐसे ये पान कर रहे हैं प्रमत्त हो रहे हैं उस समय लज्जा इत्यादि उनकी छूट जाती है कौन देखता है कि नहीं ऐसा नहीं और पुरात मैंने अत्यंत दुर्लभ किसी के लिए सुलभ नहीं है बस गोपियों के लिए सुलभ है ऐसा एकांत धाम जसस श्रीय ऐश्वर्य यद्यपि जस श्री ऐश्वर्य तीन दिया किंतु इसका अर्थ है 6 समग्र ऐश्वर्य भी जस श्री ज्ञान वैराग्य 6 के जो चरम सीमा है वो कृष्ण है एकांत धाम उसके हैं और उस रूप को गोपियां मदिरा की भांति मध्य की भांति वो पान कर रही हैं अपनी किसी को भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी भाषा में टीका करते हुए देते हैं हंत हंत बड़े प्रसन्न होकर के अरे मरी गई मरी तुम मरी गई मरी ऐसे कर ये वृंदावन भूमि वहां सुख संपन्न में ये भूमि है और इस वृंदावन में मेरी महामधुर भूमि है सुख की संपन्न भूमि और उसमें भी ये किस लिए वृंदावन भूमि ऐसे मधुर्यमय ये भूमि हुई गोपियों के अति श्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ गोपियां हैं ब्रजभूमि का जीवन ये गोपियां हैं कृष्ण को नहीं बतलाया कृष्ण तो मथुरा में भी है द्वारका में भी है किंतु यहाँ पर ब्रजभूमि में गोपियों के साथ वो होने से ही ऐसे हैं महापुरुष सिद्ध गुण अति श्रेष्ठ है इसलिए वृंदावन की जीवन स्वरूप ये गोपी है गोप्य अत्यंत गोपनीय है जैसे शरीर में प्राण गुप्त रहता है इस तरह से ये ब्रज की ये गोपनीय है आत्मा स्वरूप अथवा गोप्य कृष्ण को भी गुप्त रखती है अपने भावों को भी गुप्त रखने वाली यही महाराज
देखने वाली ऐसे वेदांत में भी यही है कि कृष्ण को अपने भाव के द्वारा अच्छा दिखते थे।
उन्होंने किमाचरती ओ ये गोपियां ऐसी हैं जो वृंदावन में धन्य हैं और वृंदावन को धन्य बनाती हैं और कृष्ण को भी गुप्त रखती हैं अपने भावों के द्वारा और वेदों में भी गोप्य है, स्वयं वेदों में भी गोप्य है, उपनिषदों में भागवत में भी गोप्य है। तो ऐसी ये गोपियां हैं। इन लोगों ने किम आचरण, किम आचरण उन लोगों ने क्या किया था, अर्थात कौन सी तपस्या की या कौन सा कार्य किया, दान पुण्य किया। यदि कोई जानता है तो कोई ज्योतिषी किया है तो वो बतला दे तो हम लोग आज भी वो करने के लिए तैयार। ये कह रहा था किसको का इतना, और ये उसको अपनी आंखों से पान करती हैं। यदि हम जान ले कि कौन सा तपस्या करके आचरण करके उन्होंने कृष्ण के इस मधुर रूप का भरोसा स्वर्ग तो हम आज ही आरम्भ कर और उनको हम पालें। सत्य तत्तपः यदि यूयम सर्वज्ञ कश्चित मुखात् ज्ञानी, यदि किसी सर्वज्ञ के मुख से हम हो सके, हम यदि जाने तो आज ही हम तपस्या आरम्भ कर। तो हम उस तपस्या को कर अपराशय कीर्तन नन्नू मलजी कीर्तन लगाइए। सखियों यदि किसी सर्वज्ञ के द्वारा हम इस विषय को जान लें कि गोपियों ने कौन सा तप किया है जो माधुर्य की अंतिम सीमा वाले इस कृष्ण के रूप रूपी रस को ये गोपियों ने कैसे पान किया, तो हम भी वही करें, उसी समय कृष्ण को पान कर सकते। अच्छा सचमुच में ये कैसे होगा, कैसे कोई पान करे? ये गोपियां जब तक गोपियों का भाव नहीं होगा तब तक कोई भी नहीं उसको इस रूप में पान कर, इसलिए ये कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कौन सा तप किया, हम भी वैसे ही पान करते तो पान कर लो, कुछ ना तो खड़े हैं क्यों नहीं पान होगा, बिना भाव के नहीं होगा, कृष्ण वही रहेंगे। तो ये कर रही है दूसरे रूप में, यहाँ पर कृष्ण को जो वो देख रहे हैं यहाँ पर कृष्ण को क्या देख रहे हैं, कृष्ण बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा आक्रांत हैं और उनको कभी नीचे गिरा दे, और ये देख रही हैं जैसे इतने बड़े बड़े पहलवान ये कृष्ण को जरूर पराभूत कर रहे हैं। तो ये पराजय के सन्मुखी होकर के कृष्ण को ये का रूप देख रहे हैं। अभी ना कभी ये कृष्ण को पछाड़ेंगे और कृष्ण उस समय में कुछ मुख क्रोध कर रहे हैं, क्रोध में मुख कपट कर रहे हैं और अपने ऊपर के दांतों से होठ को दबा रहे हैं, पकड़ रखा है, कुछ क्रोध आ रहा है। बलदेव जी का भी वैसे ही और उनसे लड़ रहे हैं। इस समय में वो कुछ पराधीन है, किसके पराधीन है, लड़ने के लिए पराधीन, वैसे युद्ध में पराधीन नहीं किंतु लड़ने के लिए वो पराधीन है, अधीन है उसको, और उस समय में उनको देख रहे हैं। और गोपियां कैसे देखती हैं, सिंह का पन का सिंह है एक, थिएटर का सिंह है एक, होता होगा कि नहीं, खांचे में रखा हुआ जो सिंह है जो कि थिएटरों में आते हैं प्रदर्शनी, वो कैसे होते हैं, जब लोग शिकंजों में बंद रहते हैं और वहाँ पर खड़े बड़ी दयनीय दृष्टि में देखते हैं वो, और सिंह जब जंगल में वो सिंह रहता है तो वो कैसा
नंदन का
कहीं भी कानून में वो एकदम भयंकर रूप में रहेगा, वो देखने लायक होता है। बहुत से दूर से देखकर कहीं लोगों का ये चित्त है कैसा होता है। ऐसे ये कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं ना, स्वतंत्र रूप में रहते हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए, यहाँ पर वृंदावन का खूब सुंदर रमणीय प्रदेश, जमुना जी भी वहाँ कल कल बह रहे, कृष्ण को देख करके मोर नाच रहे, मुनि के रूप में सब ये पक्षी इत्यादि सब उनको देख रहे, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, गोपियां उनको अपने आंखों से उनका अर्चन कर रहे हैं, अथवा जैसा सूत्र में दूसरा श्लोक क्या है, दिव्य बृंदारंग श्रीमदरत्नागार सिंहासन श्री श्री राधा गोविंद देव इत्यादि ये सब रूप है। वो वृंदावन में ही हो सकता हो कहीं नहीं, यहाँ पर युद्ध करते हुए एक क्रोध के भाव में उनको हम देख रहे हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्वच्छंद गति से उनको गोपियां प्रेम से उनको पान कर रही हैं। इसलिए यदि हम उनको पीना चाहती हैं उनके उस रूप को, तो हमें वृंदावन में जन्म लेना पड़ेगा गोपी के रूप, तभी उनको हम इस रूप में देख सकते हैं, दूसरों के लिए संभव। तो हम अभी तपस्या करेंगे, गोपी बनेगी, गोपी होकर के तब ही वृंदावन में आकर के कृष्ण के इस रूप को पान करते हैं, इसलिए हम ऐसा आज देखिए। तदेव अस्मिन जन्म में, इसी जन्म में और विलंब नहीं, इसी जन्म में प्रतिभूम गोप्यो भवेम गोपिया हम हुई एन ततस्ता अमुष्म रूपम सौंदर्य अमृत पिबंती, जैसे गोपियाँ हम उनका अमृत पीती हैं रूप का, वैसे हम भी उनको पान करते हैं। मथुरास्था अश्य पराभव विषम पित्वा, यहाँ पर हम पराभूत होकर के कृष्ण को जो देख रहे हैं युद्ध से उनका ऐसा भाव, और हम भी यहाँ पर कैसे देख रहे हैं, हम भी पराभव, हम भी अधीन हैं, यहाँ पर हम उस रूप में नहीं देख सकते हैं स्वतंत्र रूप से, इसलिए हम लोग तब जल रहे हैं वो विष को देकर। तासाम गृहि पानस्य एव तादृश तप फलम, अब उन्होंने कौन सा तप किया, गोपियों ने कौन सा तप किया, अब गोपियां कौन सी है जो तप किया, गोपियां बहुत प्रकार की हैं, जिसमें राधा जी जो गोपी हैं कौन तपस्या की,
तीन लोग के
कारण
से तेरे
तो राधा जी ने कौन सा तपस्या किया, ये कल्पना कर सकते हैं राधा जी की तपस्या से वैसा नहीं होगा, वो कृष्ण की लागिनी शक्ति विलास के लिए उनसे पृथक रूप हुई है, बस इसलिए उनकी कोई तपस्या की कल्पना मत करो, जहाँ तपस्या की बात आएगी तो वो सार्थक जीव के रूप में परिणत हो जाएगा, इसलिए तपस्या कोई भी तत्व को जानने वाला व्यक्ति ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा न ऐसी भावना में रहेगा, और उनके एक एक भाव ललिता विशाखा इत्यादि सहस्त्रों को, इसलिए उन लोगों के लिए भी तपस्या नहीं। अब तपस्या है किनके लिए, श्रुतियाँ जो वेद की के मंत्र हैं, ये वेद के मंत्र सर्वज्ञ हैं, और उन लोगों ने अपना रूप बना करके कृष्ण के रास में उपस्थित होकर के दूर से देखा, और देख करके गोपियों भाव को देख करके मोहित हो गए, और कृष्ण को उसी लालसा से पाने के लिए उन लोगों ने आराधना की, जो माया की या गोपाल मंत्र अथवा दोनों की, ये दोनों की आराधना करना होगा, एक दो जन्म नहीं, न जाने कितने कल्पों तक हम लोगों ने अभी तक कितने कल्प तक आराधना की। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से हमारा जन्म चल रहा है और अभी तक हो रहा है। अब इस जन्म में हम इतनी दूर आए हैं, हम लोग एक ही साथ के हैं, जितने भी विश्व में जीते हैं ना सभी एक साथ। इसमें कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया, ऐसा विषमता क्यों? अपने अपनी आराधना पर ये निर्भर, किसी को सुजोग ही भी नहीं मिला। हम लोग का इतना सुजोग मिला है कि अभी मथुरा तक तो पहुँचे हैं, अब यहाँ से थोड़ी दूर वृंदावन यहाँ तक तो पहुँचे हैं। इसमें कोई कोई यहाँ आकर के भी वृंदावन के निकट अभी नहीं पहुँचे, जबकि श्रुतियों ने इतनी तपस्या की कितने कल्पों तक, एक कल्प तक नहीं, न जाने कितनों कल्पों तक। और ये मुनि लोग मुनिचरी ये एक ही जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों का फल से वो त्रेता युग में दंडकारण्य में उनकी आराधना करते थे, बहुत उन्नत स्तर तक आए थे, भावावस्था तक आने वाले थे या हो गया था। भावावस्था के बाद भावावस्था माने स्वरूप सिद्धि, उनकी स्वरूप सिद्धि है किंतु वस्तु सिद्धि नहीं हुई और अभी उसके योग्य नहीं थे, किंतु रामचंद्र की कृपा से आराधना करते करते इन्हीं मंत्रों के द्वारा तब वो गोपियों के गर्भ से पैदा होकर के नित्य सिद्धाओं के संग में कृष्ण के इस रूप का वो रूप पाए। इसलिए यदि किसी की लालसा होगी तो यही दो मंत्र हैं, इन्हीं दो मंत्रों के माध्यम से हम लोग आराधना करते करते न जाने कितने कल्पों में इसको पा सकते हैं बड़ा। किंतु इस लाइन में आने पर बहुत सी बात विघ्न बाधाएं होती हैं, बहुत लाखों जिसको अपराध कहा गया, अनर्थ कहा गया, कल हमने उसका वर्णन किया। विशेष करके वैष्णव अपराध महा मुश्किल है, सबसे पहले उसको नंबर दिया दस अपराध, रहा सहा भाव भी दूर हो जाए। यदि बिना अपराध के अपराध नहीं किया तो अभी भरत महाराज जी उसे दो जन्मों के लिए च्युत हो गए, यदि अपराध होता तो वो एकदम खत्म हो जाता। अपराध कुछ किया कि नहीं, अपराध इनका नहीं हुआ, केवल आसक्ति उसमें हो गई, इसलिए तो उनका दो जन्म नष्ट हो। और यदि अपराध किसी कारण से हो जाता तब तो वो समूली उठा देते, इसलिए अपराधों से बचने की चेष्टा। यदि वैष्णव अपराध, इसलिए वैष्णव अपराधों के जो जो लक्षण है उसे दूर करना, गुरु के प्रति अवज्ञा भी नहीं होनी चाहिए, गुरु के प्रति अपराध नहीं लिखा, अपराध भी हो जाता है किंतु उन्होंने छोड़ दिया किस लिए। यदि सत्सत मुच में यदि कोई होगा सेवक गुरु से, वो अपराध नहीं करेगा, गुरु की अवज्ञा करेगा, तभी उसको भी अपराध में लिया। अपराध में और अवज्ञा में क्या अंतर?
अपराध हो जाएगा
उससे अपराध, यदि जान बूझ चलती। इसलिए इन अपराधों से बहुत बचना है। गुरु किसको कहते हैं? जिनके द्वारा यह गुरु भाव परमात्मा में प्रवेश का सुयोग हमको मिल रहा है, उसका हम कोटि जन्मों के ऋणी हैं, इसलिए उनके प्रति कभी भी किसी प्रकार से अवज्ञा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार।
इसमें ये आता है कि वैष्णवों की निंदा करने पर अपराध हो जाए और गुरु जी की अवहेलना भी कर ले तो
सभी अपराध हो जाए। यदि निंदा मत करो, गुरु जी की निंदा आदमी नहीं करता है किंतु बहुत से लोग करते भी हैं, तो उनको समझिए परमात्मा से संपूर्ण रूप से वो बाहर। और जो आदमी निंदा तो नहीं करता है अवज्ञा भी कर दिया, अवज्ञा मैंने क्या, जिनके बिना भी हमारा चल सकता है, बातों बात में अवज्ञा की, अवहेलना कर दी, उनकी बात नहीं माना। गुरु त्यागी, त्यागी तो बहुत दूर की बात है, वो तो महान से महान अपराध हो जाएगा। गुरु त्याग, गुरु त्याग उसी स्थिति में होगा यदि वो वैष्णव अपराधी हो। निम्न अधिकारी के गुरु को भी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे हृदय चैतन्य को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी अवज्ञा नहीं थी। गुरु त्याग की तो बात ही यहां नहीं है, उस गुरु के प्रति नहीं त्यागने पर भी वो तो महा 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 अपराध हो गया। और इसमें है यदि अवज्ञा यदि किया, जिनके द्वारा हमारा परमार्थ की भावना बनी, कुछ श्रद्धा आई, कुछ रुचि भी धीरे धीरे आई, हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं और उसके प्रति ही अवज्ञा यदि आ गई, तुच्छ बुद्धि आ गई, उनकी बात नहीं माना, उनके आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ऐसी बात की ये सब किया, बस किया, वो तो महान है, वो तो नहीं लेंगे। यदि उन्होंने ले लिया अपराध तो वो महान नहीं, वो लोग नहीं लेंगे। किंतु फिर भी शास्त्रों में कहा उनकी चरण की धूली उस भाव को नष्ट कर। खूब सावधानी से 64 जो अंग हैं इस पर विचार करके हम लोग भक्ति में प्रवेश करें, नहीं तो रही सही मिली हुई चीज भी हाथ से
निकल।
यह है तपस्या। तपस्या माने क्या? ये प्रारंभिक, ये एक प्लेटफॉर्म है और उसके बाद में तब गोपाल मंत्र और काम जाए, इसको यदि जो प्रदान करता है उसके प्रति कभी भी कोई भाव नहीं। और निश्चित रूप से जो हमको कृष्ण मिल ही जाएंगे, आशा बंधा अवसर से इन मंत्रों का जाप करें, इनको राधा कृष्ण का स्वरूप समझो। इसलिए पहले दशाक्षर मंत्र होता था, इसलिए पहले वाला भाग बात दे करके बस गोपियों के प्राण पल्लव स्वाहा, बस इतना। अब उसी को देखते हैं कि अनाधिकारी आदमी हो गया ना, अधिकार नहीं है अभी, इसलिए अधिकार देने के लिए और उसमें थोड़ा सा जोड़ करके उनके, जैसे कि बड़ी कठिनता से हम बिना सीढ़ी के कुछ ऊपर जा सकते हैं, तो पहले तो लोग लंबे चौड़े मजबूत होते थे, इसलिए उतनी सीढ़ी की जरूरत नहीं रही होगी। 1 फुट ऊंची सीढ़ियां होती थी ना पहले, और अब 6-6 इंची ऊंचाई पर एक एक सीढ़ी है। हम लोग ने 6 इंची बनाया, किस लिए बनाया? पहले यहाँ पर थी, तुम लोगों ने देखा 1 फुट ऊंची थी सीढ़ी, हम लोगों ने उसको तोड़वा करके 6 इंची, इसलिए सुगमता से उसको जाने के लिए। उसी तरह से पहले यह दशाक्षर ही मंत्र था, गोपाल मंत्र का हुआ सुगमता के लिए, अनाधिकारी व्यक्ति भी इसमें प्रवेश कर सके, इसलिए उसमें और लगा दिया स्पष्टीकरण, नहीं तो वही काफी है। महाप्रभु जी को इतना ही मिला था, माधवेंद्रपुरी जी को इतना ही मिला था, बस स्वाहा उतना ही। और काम गायत्री, इस गायत्री की सार है, परिपक्व अवस्था है, वो हमारे हृदय में प्रकृष्ट रूप से प्रच उदय हो, उसके लिए प्राप्त। कैसे उदित होंगे? अनंग है ना, तो कैसे उदित होंगे? उस भाव के साथ में उदित हो, ऐसी भावना यदि हो ना, वो भाव कैसे आएगा कृष्ण में? यदि वो अपनी पूर्णतम शक्तियों के साथ में यदि रहे तो, ऐसे नहीं। ये है इसकी आराधना, इसकी आराधना करने पर ही उनको पास। इसलिए ये लोग भी सूतियों की भांति अथवा मुनियों युद्धचरी मुनियों की भांति तपस्या, हम लोग के संप्रदाय के अतिरिक्त ये सब भावना नहीं है कहीं। इसलिए हम लोग अभी जो कुछ कर रहे हैं आराधना पर चल रहे हैं, इसको आराधना समझ करके चलना होगा, तभी यह संभव होगा। कैसा उनका रूप? लावण्य, लावण्य का सार कृष्ण का रूप है। इसका वो गोपियां पान करती हैं छंद भांति से, स्वच्छंद भांति से पान करती हैं। लावण्य माने केवल गोरा रहने से ही, गौर वर्ण रहने से ही सुंदर नहीं होगा, श्याम वर्ण भी रहे किंतु मुख पर पानी हो, लावण्य हो, तब उसमें सौंदर्य होता है। बहुत से लोग हैं उतने गोरे नहीं हैं, किंतु मुख पर पानी होता है, लावण्य होता है, तेल जैसा, जैसे कि
मोती
में भीतर से रश्मियां कुछ निकलती हैं, ऐसा होगा। यदि वो नारे तो रूखा होगा,
तरल था,
उसी को कांति कहते हैं। तो उस लावण्य के सार को सब समय वो पीती हैं गोपियां। लवण्यम लवण्यमधिकम वर्तत, किंतु लावण्य सार सारस्य पिज्जा सार, लावण्य का भी जो सार है उसका भी सार स्वरूपों में एवं, उसका स्वरूप ही है वह कृष्ण का के रूप का स्वरूप ही ऐसा है, लावण्य का सार का भी सार है। ननु श्लोकादिभ्यो अपि न्यून भूर्लोके अपि अस्मिन् चेत एवं रूपम दृश्यते। अजी क्या इस जगत में तो ये रूप नहीं होगा, कहाँ होगा, महावैकुंठ में। यदि ऐसा कहो कहने नहीं, ऐसा मत कहो, ये इस पृथ्वी लोक में भी वृंदावन में यह रूप वृंदावन को महावैकुंठ से भी ऊपर समझो, से श्रेष्ठ समझो, ये वृंदावन है। महावैकुंठ रूपे इति अपि अधिकं मधुरं नारायणस्य रूपं भवेति इति तत्र। एक श्लोक है, श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्य सौंदर्य मोही समस्त जगत जनस्य श्यामस्य बाम्भुज बुद्ध कतुं कदाहं स्वामिन् दिरे विरल रूप विरल रूप। ये इंद्रिया कौन सी है, इंद्रिया कहाँ रहती है, नारायण वो इंद्रिया से भी कोटि गुण श्रेष्ठ है, महाजलक्ष्मी उनके जो पति नारायण है उनसे भी, नारायण से भी श्रेष्ठ है जिनका रूप कृष्ण का है। उसको देख करके वो लक्ष्मी और नारायण दोनों मोहित हो जाते हैं, नारायण भी मोहित हो जाते हैं। जब कृष्ण स्वयं मोहित हो जाते हैं तो नारायण मोहित हो गया तो कोई बड़ी बात,
गोविंद माधुर्य देखिए वासुदेव
वासुदेव का खूब हो जाता है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग का दुर्भाग्य है और हम लोग की ऐसी साधना नहीं है जो हम लोग उस रूप में उनको अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, असंभव। नारायण राम इत्यादि रूपों में भी वह रूप नहीं है, असमोर्थ असमोर्ध सम एव रूपम पापी नास्ति, उनके बराबर ही किसी का रूप नहीं है, स्वयं द्वारकाधीश या मथुरेश कृष्ण का भी नहीं, इसलिए कह रही हैं हम तो मथुरेश कृष्ण का भी रूपान कर रहे हैं और भी क्रोध अवस्था में लड़ते हुए, और गोपियां वृंदावन में स्वच्छंद रूप से कृष्ण के असमोर्ध रूप का रूपान कर रही हैं। कैसा रूप वर्णन किया बृहद भगवतामृत में, सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि को कल्पना नहीं है, पद्मा इत्यादि की तो बात ही क्या, कल्पना नहीं कर पा रही ये कितना सुंदर रूप हो, गोपियां इनको क्यों इतना प्यार करती हैं, और गोपियों को ये प्यार इतना करते हैं ये उनके समझ में नहीं है। कृष्ण ने एक मिनट के लिए उस रूप को वहां पर प्रकट किया, ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट कराया, उस समय कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, यशोदा जी की मूर्ति वहां पर बनाई गई है, हाथों में मक्खन लेकर के खड़ी है, और कृष्ण ने ठुमक ठुमक नृत्य करते हुए पीछे से आकर के थोड़ा सा उसमें चुरा लिया जो मैया को मालूम न रहे, और लिख करके और किस प्रकार से जैसे दो पैर से ऐसे ऐसे करते हुए लड़के चलते हैं उसी रूप में चले, मोर मुकुट हाथ में बंसी, विश्व को विस्मय करने वाला ऐसा लावण्य सार निकला। जबकि आगे बढ़े सखाओं से परवेश उनसे भी आगे बढ़े, जब जिस समय गोपियों को देखा, गोपियों के मध्य में वो जब खड़े होते उसको देख करके रुक्मिणी सप्तभामा सभी मुड़ी, सप्तभामा दौड़ी पकड़ने के लिए। उस समय में रोहिणी मैया और कौन बलदेव, बलदेव जी ने और उद्धव ने उन लोगों को मना किया, नहीं तो उसी समय में पकड़ लेती थी। इतना सुंदर, इसलिए ये भी उसी रूप का चिंतन कर रही है। इसलिए उनसे अधिक की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। नमोत्तर ही कृष्णेन तद रूपम कुतः, अर्थात कृष्ण का यह सुंदर रूप कहां से आया, मैया से प्राप्त हुआ न कि आभूषणों के द्वारा प्राप्त हुआ, न कपड़ों के द्वारा यह हुआ, न किस रूप या वृंदावन में होने से यह हुआ, नहीं अनन्य सिद्धम अनन्य सिद्धम। तब एक बात है, यह बात की गोपियों के सानिध्य में वृंदावन के होने के वजह से ही इनका इतना ये बात ठीक है। अनन्य सिद्ध होने पर उनका स्वाभाविक रूप है। ननु एवं अपि एतद् रूपम् तासद् एकरूपत्वेन पश्यन्ति चेत् तदापि तासां न सत् चमत्कारम्
न असत्
न
सकृत चमत्कार सत्र
तो ये करें कि अनसवाद नवम प्रत्येक क्षण उस रूप का ये पान कर रहे हैं। हम लोग किसी एक
कृष्ण के बहुत से चमत्कार हैं, केवल एक ही बार एक समय में चमत्कार देखा, इतना हमेशा निरंतर उनके नव नवायमान रूप में चमत्कार था।
तो एक एक क्षण में एक एक प्रकार से उनका रूप दिखता है अनुभव। पहले एक बार देख लिया, हम लोग किसी रूप को देखते हैं साथ साथ में आगे बढ़ जाते हैं, किसी को देखा मुख देख लिया बस खत्म, आगे बढ़ गया, हमारी उत्कंठा खत्म। किंतु कृष्ण का रूप ऐसा नित्य नवीन रूप में देख, ये भाव के द्वारा होगा, ऐसे नहीं कंस उस रूप को देख करके उसकी उत्कंठा देखने की नहीं होगी, बल्कि उनको मारने की उत्कंठा उसकी। जरासंध इत्यादि उस रूप को देखा किंतु चिंतन नहीं किया उसका, इसलिए कहते हैं अनसवाम प्रतिक्षणम नूतनम एवं तरही तत्व गत्ता अन्य देशीया भी अभी स्त्री भी सुखे न अयम दृश्यतामिति। इसलिए हम लोग भी वहाँ जा करके अन्य देशियाँ माँ भी
दूसरे देश की स्त्रियाँ भी सुख से देखें,
अब दूसरे भी देखें, कहते नहीं वहाँ पर जा करके देखने से भी नहीं होगा, उनका जैसा भाव होना चाहिए, भाव से नए नए रूप में वो प्रतिभात होंगे देखे जाएंगे। क्योंकि दुरापह लक्ष्मी इत्यादि के लिए भी बड़े दुर्लभ है, लक्ष्मी को भी वैसे रूप नहीं दिखते। कहने लिया नारायण इत्यादि भी तो भगवान है, उनमें भी श्री है और सुंदरता है, होने से भी सर्वैश्वर्य सब में होने पर भी, भगवान के अवतार में होने पर भी अंतिम सीमा अंतिम परिधि कृष्ण इस भजन अंदर में। इसलिए छ ऐश्वर्य समग्र बीज जस श्री
ज्ञान
ज्ञान और वैराग्य की परिणति भगवान होने पर भी स्वयं भगवान कृष्ण है, इन्हीं में ये एकांत धाम, ये रूप श्री जश ज्ञान वैराग्य सब इसी कृष्ण में ही संभव है। इस तरह से वो ये भाव आने पर ही कृष्ण का यह रूप देखा जा सकता है। राधा अब यहां पर समापन इस अध्याय को कर रहे हैं, यहीं तक भाव की गति, यहीं तक भाव की गति। अब इसके बाद में आएगा प्रेम विप्रलंब और तब में आएगा मिलन का।